نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم نواقض ایمان اسلام کی چار بنیادیں اس میں سے اب ہم ایمان اور تعلق باللہ کی بات پڑھنے کے بعد جس سٹیج پہ پہنچے وہ کیا ہے کہ وہ امور جو ایمان کے ختم ہونے کا باعث ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں جس چیز سے آپ کو محبت ہوگی آپ کو دھڑکا رہے گا کہ وہ چیز آپ سے چھن نہ جائے تو جب کوئی قیمتی چیز چھنتی ہے تو اس کا دکھ ہوتا ہے انسان کو اسی طرح غیر مخصوص طریقے سے ایمان بھی ہم سے چھن جاتا ہے آپ دنیا کی کسی چیز کو اپنے امیجینیشن میں لائیں کہ وہ چیز آپ سے کب چھنتی ہے چوری کب ہو جاتی ہے گم جاتی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ اگنورنس ہوتی ہے اچھی ٹیک کیئر نہ کرنا آپ چیزوں کے بارے میں بہت کیئر لیس تھے چوری ہو گئی آپ کو احساس ہی نہیں تھا کہ یہ چیز مہنگی ہے سستی ہے آپ نے بلا سوچے سمجھے کسی چیز کو لیا بعد میں پتہ چلا کہ آپ کے پیسے ختم ہو گئے اسی طرح سے جب ہم ایمان کے بارے میں کیئر لیس ہوتے ہیں نا ہمیں اس کی کیئر نہیں ہوتی تو ہمارے سے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے ایک اور وجہ کسی دنیا کی چیز کے نظر سے دیکھیں تو اس کے چھننے کی کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی امپورٹنس کا احساس نہیں ہوتا مثلا کسی نے آپ کو گولڈ کا سیٹ دیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل ہوگا آپ نے اس کی وہ کیئر نہیں کی جو گولڈ کے سیٹ کی کریں گے چونکہ کیئر لیس رہے تو وہ چیز گم گئی یا خراب ہو گئی بعد میں کوئی کہتا ہے آپ کا وہ سیٹ کیا ہوا آپ کہتے ہیں بس وہ گم گیا پتہ نہیں کدھر ہے آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ سونے کا تھا اچھا وہ سونے کا تھا اب آپ جو مرضی کوشش کریں لیکن وہ نقصان آپ کا ہو گیا اب یہ تو دنیا کی چند مثالیں ہیں نا ایمان ان سب چیزوں سے قیمتی چیز ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایمان کے ختم ہونے کے کیا اسباب ہوتے ہیں سب سے پہلے ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے لوگوں میں یہ عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ شخص جو مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا وہ مسلمان ہی رہے گا خواہ اس کے کچھ بھی افکار نظریات اور عقائد کیوں نہ ہوں یعنی اس کی سوچ اس کا طرز زندگی اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو چونکہ وہ ایک بار مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو اب یہ کبھی بھی اس سے نکلے گا نہیں اور اسی طرح سے جس شخص نے ایک مرتبہ منہ سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکال لیا تو وہ قیامت تک مومن ہی رہے گا خواب بات میں اس کا دل اللہ کی ذات پر ایمان سے خالی ہو جائے اور وہ عملاً اور ذہناً اور فکراً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ضروری نہ سمجھے وہ مومن ہی رہے گا اس کے ایمان میں نہ کبھی زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی یعنی ایک مرتبہ جو شخص دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا اب خواہ اس کے کچھ عقائد و اعمال ہوں اور زندگی کے مختلف معاملات میں اس کے خواہ کچھ ہی نظریات ہوں اب وہ مومن ہی رہے گا ایمان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی پہلے بتائیے کہ کیا یہ غلط فہمی ہے ہمارے ہاں کے نہیں پہلی بات چونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو مریں گے بھی ادھر پھر تو آسان ہی بہت تھا دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی جو فکر سوچ اس کے عقیدے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اسٹل ہی از اے مسلم اور ناٹ تیسری غلط فہمی ہمارے ہاں عموماً کیا ہے کہ بس چونکہ ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیے تو بس اب مرنے تک یا قیامت کے بعد بھی ہم ایمان والے ہوں گے چاہے ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہو چاہے نہ ہو چاہے ہمارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو کہ نہ ہو ہم ان کی اتباع کو ضروری سمجھیں نہ سمجھیں ہم ایسے ہی رہیں گے ایک چوتھی غلط فہمی کیا ہم نے دیکھی یہ بڑی اہم ہے اس پہ توجہ کیجئے گا کہ ایمان میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی یعنی یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے ماضی میں لوگوں کے درمیان اور جتنے بھی فرقے گزر چکے ہیں حدائد کے اعتبار سے کچھ حد سے نکلے ان میں سے بہت سارے فرقوں کا یہ نقطۂ نظر تھا کہ ایمان ایک جامد چیز ہے سٹیگننٹ تھنگ ہے نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے جبکہ ریئلٹی کیا ہے کہ ایمان ایک متحرک چیز ہے ابھی تک جو کچھ ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا اس کے ساتھ آپ کو حرکت کا احساس ہوتا ہے ہلچل کا احساس ہوتا ہے جوش اور ولولے کا احساس ہوتا ہے اب اس کو ایک مثال سے سمجھیے گا یہ دیکھیے ٹیبل پہ ایک فلاور پاٹ رکھا ہوا ہے اس میں کچھ پھول ہیں اب آپ دور سے ان کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پھول لگ رہے ہیں میں قریب سے بھی دیکھوں گی تو مجھے پھول لگیں گے آج اپریل کی 14 تاریخ ہے 2016 ہے اگر میں 14 مئی کو دوبارہ ان کو آ کر دیکھوں یہ بالکل جیسے آج ہیں یہ ویسے ہی دکھے ना इनका रंग बदला, ना इसके पत्ते झड़े, ना इसमें कुछ झुर्रियां पड़ी, तो मैं क्या कहूंगी कि ये आर्टिफिशियल फूल है। ठीक है, इस कमरे में मट्टी नहीं आएगी, इसमें कुछ नहीं आएगी, आप इसकी केयर करेंगे, 1 साल, 2 साल, 4 साल बाद भी इनका यही रंग रहेगा। इसके बरक्स अगर मैं इन फूलों को आज देखूं और 1 महीने के बाद, क्या 15 दिन बाद भी देखूं, तो रंग बदल चुका है, मुरझा चुके हैं और पत्ते खुश्क हो गए हैं, तो मेरे जहन में क्या आएगा, ये असली फूल है लेकिन वक्त के साथ साथ अब ये मुरझा रहे हैं। ठीक है, तीसरी सूरत क्या है कि आज 1, 2, 3, 4 फूल है और बीच में मुझे वो छोटी छोटी कलियां भी दिख रही हैं, 1 महीने बाद मैं दोबारा देखूं तो ये 4 की जगह 6 फूल हों और नीचे 4 कलियां भी उग चुकी हों और इनकी रंगत वंगत सब बिल्कुल ठीक हो, तो फिर मैं ज़रूर सोचूंगी, ओ अच्छा, ये जो नीचे फ्लावर पॉट है ना, इसमें मिट्टी भी है, पानी भी है, और ये उगे हुए फूल हैं, टूटे हुए फूल नहीं हैं। तीनों में देखिए, पहले में बस जैसे थे वैसे ही रहेंगे, ना खुशबू ना बू। आर्टिफिशियल और असली फूल का फर्क क्या है? आर्टिफिशियल लोगों को आप क्यों नहीं देते फूल, कहते हैं इसमें ना रंग ना खुशबू। रंग तो होगा, खुशबू कोई नहीं होती। आप कहते देखिए ये पायदार बहुत है, दुकानदार कहते हैं ये आर्टिफिशियल फूल ले जाएं, ये पायदार बहुत हैं, कभी खराब नहीं होंगे, पर आप कहेंगे जिसको मैं दूंगी उसको, एक तो ये सख्त लगेंगे, नरम नहीं होंगे, दूसरी बात है कि इसमें खुशबू नहीं है, और एक वो जिंदगी का एहसास नहीं है। क्यों लोग फ्लावर बके हमेशा देते हैं, फ्रेश फूल देते हैं? मोहब्बत, जज्बे, जिंदगी का एहसास होता है ना फ्रेश फूलों में। इसके बरक्स जो आर्टिफिशियल फूल होते हैं ना, उसमें जिंदगी नहीं होती। तो बस ये है वो मिसाल, कुछ लोगों का ईमान आर्टिफिशियल फूलों वाला होता है, जहां 1 साल पहले थे खड़े वहीं खड़े हैं, ज़ाहर बड़े चमकते चमकते, लेकिन उनका ईमान उनको मजीद बढ़ने नहीं देता, फैलता नहीं है। अच्छा, कम भी कोई नहीं हुआ, जैसे थे आज से साल पहले एग्जैक्टली वैसे ही हैं। जिंदगी एक डगर पे चल 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 रही थी और चलती गई और दैट्स इट, खत्म हो गई जिंदगी, उसी में ये लगे रहे। नतीजा क्या निकला कि ऐसे लोग फिर कोई फल फूल नहीं लाते, ऐसे लोग कभी भी ईमान के नाम पर कोई खूबसूरत खुशबूदार फूल सोसाइटी को नहीं देते। रियल ईमान, हकीकी ईमान पौधे में लगे हुए फूल की तरह होता है, कभी बहार आती है, कभी खिजा आती है, कभी ज्यादा फूल होते हैं, कभी कम फूल होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। नतीजा क्या होगा कि एंड पे आप जब उसको देखेंगे, आप कहेंगे आजकल बहार है ना, तो देखिए कितने फूल हैं। अच्छा, आजकल खिजां हैं तो आप देख रहे हैं कि फूलों का रंग बदल रहा है, और सर्दियां आई हैं तो ये हो गया वो हो गया। ईमान एक जिंदा हकीकत का नाम है। अब ये आप अपने अंदर महसूस करें ना, देखिए प्रेग्नेंट औरतों को फीलिंग आने लग जाती है कि उनके अंदर एक बच्चा है, एक जिंदा हस्ती है उनके अंदर। ठीक है, ये एहसास ही माँ को बहुत केयरफुल कर देता है ना। जब आप ईमान को एक जिंदा हकीकत समझकर अपने अंदर महसूस करेंगे ना, तो आप कभी सुस्त नहीं रहेंगे, बेहिस नहीं रहेंगे। आप कहेंगे कि मुझे अपने अंदर के इस ईमान के पौधे की ग्रोथ करनी है, मुझे इसको हरकत देनी है। तो सच्चा ईमान बंदे के अंदर जिंदगी लाता है। अच्छा, घटता भी है, बढ़ता भी है, ये भी याद रखिए। क्या आपको कभी खुद नहीं महसूस हुआ कि कभी तो दिल करता है कि सर सजदे से उठे ही ना, और कभी फर्ज सजदे भी बोझे लगते हैं, कभी आप इतने केयरफुल हो जाते हैं, आप कहते चलो जुमेरात और पीर का रोजा रख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मुश्किल भी है लेकिन मुझे सुकून कितना मिलता है, मेरा नफ्स कितना दबता है, मेरे अंदर सब्र कितना आता है, हाइपरनेस कितनी कम होती है। और कभी आप कहते हैं छोड़ो, क्या जरूरत है इन चीजों की, बस रमजान आएगा तो रखेंगे। तो जिन दिनों में नेकियां करने को दिल जाए, समझे कि ईमान के पौधे पे बहार आई भी है, और जब नेकियां मुश्किल लगे तो इस पे खिजा आई भी है। और ये सारे असबाब भी होते हैं। अभी चूंकि हम इसके नक्श पढ़ेंगे ना, तो पहले सबब भी देख लें, एक टॉपिक हम अपने पास से बना लेते हैं। ईमान बढ़ता किस चीज से? जैसे आप कह दें कि पौधे में खाद डालें, पानी दें, धूप लगे, रोशनी लगे, तो पौधा जल्दी बढ़ता है। उसको जमीन के ऐसे हिस्से में रखा जाए जहां चारों तरफ से एक जैसी रोशनी हो। ईमान का पौधा बढ़ता है इल्म के पानी से। ये जो आप इस वक्त इल्म लेते हैं और लेते रहेंगे इंशाल्लाह, ये आपको आलिम नहीं बनाएगा, ये आपको बा ईमान बनाएगा। جن لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے نا، وہ کبھی علم کے پانی سے خود کو الگ نہیں کرتے، یہ یاد رکھیے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہر پودا ہر زمین پہ نہیں اگتا. آپ یہاں بڑے ماحول میں بیٹھ کے عادی ہو گئے نا علم لینے کے، آپ کہتے ہیں چلے اٹھتے ہیں ذرا وہ دو چار گلیاں چھوڑ کر کسی اور ایک جگہ بھی تو علم دیا جا رہا ہے، وہاں بیٹھے پہلے دن آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گا. ہر زمین کا ایک پودا ہوتا ہے، اگر آپ کا دل کا پودا ایمان کا پودا کسی جگہ جڑ پکڑ گیا نا تو مبارک ہو آپ کو. زمین بدلنے سے پودے یا ہرے بھرے پودے سوکھ بھی جاتے ہیں. اور اگر آپ کا یہاں دل نہیں لگ رہا، کچھ ملا ہی نہیں آج تک، تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ کسی اور جگہ کی زمین ٹرائی کریں، شاید آپ کو یہاں کا طریقہ، اسباب، ماحول، ایٹماسفیئر، ٹیچر نہ سوٹ کی ہوں. پاسبل ہے آپ کے اندر کوئی چینج نہیں آ رہی، جائیے آپ پھر کوئی اور ڈھونڈیے، شاید آپ کا دل وہاں لگ جائے، شاید وہاں آپ کا ایمان بڑھے. لیکن جس کو ایمان کی فکر ہے وہ کبھی بھی ایمان دینے والے پانی سے الگ نہیں ہوگا. تو اب یہ میں اور آپ خود سوچیں گے کہ میرا ایمان گھٹ رہا کہ بڑھ رہا ہے. جب ایمان بڑھتا ہے نا، اس کی دلیل قرآن کی آیتوں میں کچھ میں موجود ہے، آئیے دیکھتے ہیں. حقیقت یہ کہ ایمان مختلف اسباب کے زیر اثر زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. نمبر ون لکھ لیں اس پہ، چونکہ ایک زندہ حقیقت ہے تو کبھی زیادہ ہوگا کبھی کم ہوگا. تبھی تو کبھی نیکیاں کرنے کو دل کرتا ہے اور کبھی نیکیاں مشکل لگتی ہیں. سورۃ انفال آیت 2 ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں وہ آیات اضافہ کر دیتی ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، خود سے پوچھئے. چلیے یہاں ہم اپنے اوپر علیہم کی جگہ اپنے اوپر لکھ لیں علیہ. جب میں قرآن کی آیتوں کو پڑھتی ہوں سنتی ہوں تو میرا ایمان بڑھتا ہے. کون سی تلاوت سے ایمان بڑھے گا؟ جو تلاوت سمجھ آتی ہے. تو قرآن کو سمجھنا ایمان کو بڑھانا ہے. میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتی ہوں، دنیا کے کسی فورم میں لا کے کھڑا کر دیں، میں کہوں گی لفظی ترجمے کو سینے میں اونڈیلنا، عربی سے اردو کا لطف لینا، اس سے زیادہ ایمان بخش چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. اگر آپ کو آزمانا ہے نا تو سب کام پہلے چھوڑیں، اس پہ کام کریں. ہم ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، فقہ کا کورس کرتے ہیں، گرامر سیکھتے ہیں، تجوید بہتر کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے نام، سلوگن، یونیورسٹیز، وہ کورس. میں سب کو ایک پلڑے میں ڈال کر آپ کو اس بات کا یقین دلا سکتی ہوں، پہلے اس قرآن کو سینے میں ڈالیں، قرآن کی زبان میں باتیں کریں. آپ کے شوہر آپ سے پوچھے کیا حال ہے آپ کا، تو آپ جواب میں قرآن کی آیت پڑھیں. کسی سے کوئی بات کریں، وہ ایک عورت جو عبداللہ بن مبارک کو ملی تھی، 8 دن تک قرآن کے سوا کچھ نہ بولی. بچوں نے گواہی دی کہ 40 سال سے قرآن کے سوا کچھ نہ بولی. یہ قرآن پائیں پھر جائیں کچھ اور کریں، آپ کے لیے میدان کھلا. جس نے ابھی تک قرآن کا لفظی ترجمہ اپنے سینے میں نہیں ڈالا اور اس کی تفسیر کو دل میں نہیں اتارا، اس کو حق کی کوئی نہیں ہے کچھ اور پڑھنے کا. آپ گرامر پڑھ کے کیا ایمان میں اضافہ کریں گے؟ ہاں، گرامر آپ کو بہت فائدہ دے گی. کب؟ جب آپ کو قرآن کی سمجھ آ رہی ہوگی. ہر علم کا فائدہ ہوتا ہے، بیکار کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اصل ایمان پروڈیوسنگ تھنگ کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کو پڑھنا اور سمجھنا. یہ ساری جو چیزیں نا، تجوید، گرامر، فقہ، یہ ٹولز ہیں. قرآن پڑھنے کا اصل جو مدعا کہہ لیجئے، یا جو اس قرآن سے اصل میں ہم نے لینا ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ ایمان. آپ یہاں کیوں آتے ہیں قرآن پڑھنے؟ ایمان لینے کے لیے. بھائی ایمان کیوں چاہیے؟ آپ کے ایمان انرجی ہے میری نیکیوں کی. بھائی نیکیاں کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ کل اللہ کو جواب دینا ہے. بھائی اللہ کو جواب دینے سے کیا ہوگا؟ حساب لے گا. آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈیلی کا لیسن آپ کو سیدھا کر دے گا. کئی لوگ ہیں ان کے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل نہیں ہے قیامت کے دن، نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ فقیہ ہے، نہ مفتی ہے، لیکن وہ بہت اوپر پہنچ جائیں گے. کیوں؟ کہ وہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جددو ایمانکم، تجدید کرو اپنے ایمان کی. جدد کیا ہوتا ہے؟ جدید، نیا کرو اپنے ایمان کو. قیل یا رسول اللہ کیفا نجدد ایماننا، ہم کیسے اپنے ایمان کی تجدید کریں اللہ کے رسول؟ قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو. جو مسند احمد کی روایت ہے، جلد 2 359 پہ. अब मुझे बताइए कि आप यहाँ बैठ के एक दफ़ा कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, या आप इसको 100 बार पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, किधर ईमान की तजदीद हुई? 100 दफ़ा पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बरक्स एक बार शऊर के साथ आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर इलाह में वो सारे नाम लें, ला मालिक इल्लल्लाह ला रज़्ज़ाक इल्लल्लाह ला वहाब इल्लल्लाह, तो मेरा हले 10 से ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क़यामत के दिन इंसान के गुनाहों के दफ्तर होंगे कि जिसके बाद उसका पलड़ा गुनाहों का झुका होगा, और फरिश्तों को कहा जाएगा कि इसके गुनाह बढ़ गए, जहन्नम में जाएगा। इतने में एक कागज़ की पर्ची लाकर उसके नाम अमाल में रखी जाएगी तो उसके वजन से उसका नेकियों का पलड़ा भर जाएगा। पूछा जाएगा ये क्या है? कहा एक दफ़ा जिसने सिदके दिल से सच्चे दिल से कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह किसी ऐसे लालच के सामने भी किया जा सकता है जहाँ कोई आपको लालच दे लेकिन अल्लाह की नाफरमानी हो, तो आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं नहीं मानूंगी ये बात, मैं नाराज नहीं कर सकती रब को। तो असल बात यह कि ला इलाहा इल्लल्लाह को समझा जाए। जिस तरह से बाज़ असबाब और अवामिल ऐसे हैं जो ईमान में इजाफे का बायस बनते हैं, इसी तरह से बाज़ असबाब और अवामिल ऐसे हैं जो ईमान में कमी का बायस बनते हैं, और बाज़ बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से ईमान बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और इंसान दायरा ईमान से खारिज हो जाता है। इन बातों को नवाकिज़ुल ईमान या नवाकिज़ुल शहादतैन कहते हैं। नवाकिज़ समझ गए, नक्स डालने वाली, नकजात किसको कहते हैं? तोड़ने को। कुरान में ये लफ्ज़ कहाँ आया है? अल्लज़ीन यनकुदून अहदल्लाह मिन बादी मीसाकी, सूरह बकरा में भी आया है बनी इसराइल के नाते से। नक़द अहद आपने लफ्ज़ सुना होगा तोड़ने के मानों में। और शहादत इन क्या होता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, तो आइए वो चीज़ें देखेंगे। हम 13 चीज़ें इधर देखेंगे और इसके एक्स्ट्रा भी कुछ चीज़ें देखेंगे कि जिनसे ईमान टूटता है। पहले आप ये बताएं कि क्या इस टॉपिक को पढ़ते हुए आपको खौफ नहीं महसूस हुआ? हाय मेरा कीमती ईमान टूट जाएगा। चलें क्रिस्टल का कोई बर्तन है आपके घर में, आप एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं, हाय ये टूट जाएगा, क्रिस्टल का ग्लास टूट गया, पायरेक्स की डिश टूट गई, है ना? तो कितने की होगी वो, और क्या दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलती? लेकिन जब ईमान टूटता है, जब अल्लाह से ताल्लुक टूटता है, तो हमें उस वक्त इसकी कितनी को केयर होती है। तो सबसे पहली चीज़ जिससे ईमान के टूटने का डर होता है वो है गैर अल्लाह पर एतमाद और भरोसा। और मैं सच कहूँ कि आज उम्मत मुस्लिमा के ईमान के टूटने का सबसे बड़ा सोर्स ही है। वो कहते हैं ना कि बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, और बता काफ्री क्या है। आज हमारी सारी उम्मीदें गैर अल्लाह से, इसको पढ़ते हैं फिर बात करेंगे। अल्लाह सुबहान तआला ने हमें यह हुक्म फरमाया है कि हम सिर्फ इसी की ज़ात पे भरोसा करें और इसी पे तवक्कुल और एतमाद रखें। दुनिया के कामों मादी असबाब के बगैर बज़ाहर इंजाम, यानी दुनिया के काम मादी असबाब के बगैर बज़ाहर इंजाम नहीं हो पाते, सच है ना? यानी मेहनत करेंगे तो ही रिस्क आता है ना, घर में आटा गूंदेंगे रोटी पकाएंगे तो पकती है। तो हकीकत है कि दुनिया के कामों के लिए मींस तो यूज़ करने ही पड़ते हैं, लेकिन फिल हकीकत ये दुनिया मादी असबाब पर कायम नहीं। मादी असबाब में तासीर अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह ताला की मर्जी से है, सही है ना? यानी ज़मीन के अंदर आप बीज डालते हैं तो बीज निकलता है ना, पौधा निकलता है। तो ज़मीन के अंदर ये तासीर किसने डाली? बीज के अंदर ज़िंदगी की नमू किसने डाली? अल्लाह ने डाली। असल मुसब्बब, मुसब्बब क्या है? सबब पैदा करने वाला। असल मुसब्बब अल्लाह की ज़ात है, असबाब पैदा फरमाने वाला, या असल मुसब्बब अल्लाह ताला की ज़ात है, और इसी पर भरोसा रखना चाहिए। मोमिन को अमल करने का और असबाब दीनवी और मादी से फ़ायदा हासिल करने का हुक्म दिया गया, और इसके साथ ये भी हुक्म दिया गया है कि वो इन असबाब पर मुतलिकन, मुतलिकन मीन पूरा कंप्लीट भरोसा ना करे। यानी वो ये कहे कि बीज को ज़मीन में डालूंगा तो पौधा उगेगा, लेकिन पूरा ज़मीन पे भरोसा ना करे, बल्कि ये कहे ज़मीन में बीज डालूंगा तो अल्लाह ने अगर चाहा तो फिर पौधा उगेगा। मोमिन और काफिर में बुनियादी फ़र्क यही है कि मोमिन भी मादी असबाब को इस्तेमाल करता है लेकिन काफिर मादी असबाब पर भरोसा रखता है। फ़र्क समझे? एक है टू यूज़ और एक है टू रिलाई, बहुत फ़र्क है दोनों में। اور مومن ان اسباب پر توکل اور اعتماد نہیں رکھتا، اس کا توکل اور اعتماد صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اسباب اور عوامل پر یوں بھروسہ کر لینا کہ ان کی مستقل تاثیر اور طبیعت کا قائل ہو جائے، یہی شرک ہے۔ اب اس کو ہائی لائٹ کریں، میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دے دیتی ہوں جو آپ سب کے لیے بہت ایزی ہوگی سمجھنی۔ مثلا آپ اپنے بچے کو سکول بھیجتے ہیں، کیریئر بلڈنگ، ایجوکیشن، پہلے سکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، یہ کیا ہیں آپ کے اسباب۔ آپ کا خیال کیا ہے کہ ان اسباب کے تحت آپ کے بچے کا مستقبل بہت روشن ہے، ڈاکٹر بن جائے گا تو کروڑ پتی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب آپ ان اسباب کو اختیار تو کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنے سے ڈیفینیٹلی رسک مل جائے گا، یا دوسری طرف اگر میرا بچہ پڑھے گا نہیں، ڈاکٹر نہیں بنے گا تو بھوکا مرے گا، یہ کہنا کہ یہ ایجوکیشن اس کو دولت مند کر دے گی، یا یہ پڑھائی نہ کی میں نے تو میرا تو مستقبل خراب ہو جائے گا، یہ شرک ہے۔ آج کے طریقہ تعلیم میں یہ شرک عام ہے۔ میں اکثر سوچتی رہ جاتی ہوں، اور میں سوچتی ہوں کہ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو تو نہیں پتا، لیکن جن کو پتا ہے ان کو کیوں نہیں شیطان یہ بات سمجھانے دیتا کہ یہ ذرائع ہیں، یہ منزل نہیں ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ایک ہوتے ہیں جو اللہ کی پوری رحمتوں میں ہیں، اور ایک جن کو رحمت کا کچھ حصہ ملا۔ آپ کہہ لیجئے کہ ایک عام لوگ ہیں اور ایک خاص لوگ ہیں۔ عام لوگ وہ ہیں جو عام معاشرے میں جی رہے ہیں، جو سب کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اچھے کام کرتے ہیں برے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ تو جو بھی سوچیں اللہ ان کے ساتھ کرے گا۔ لیکن خاص الخاص لوگ جن کو اللہ اس دنیا میں بیٹھ کر جنت کے نظارے دکھائے، ان کی سوچ دوسروں سے فرق ہونی چاہیے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، جو مجھے چیز قوت دیتی ہے نا، وہ کیا دیتی ہے کہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ دین بڑا ہے کہ دنیا۔ چلے دین کی تعلیم زیادہ اہم ہے یا دنیا کی؟ یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دین کی تعلیم حاصل کرتے کرتے بیسیوں لوگ دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، کورسز شروع ہوتے ہیں پھر لوگ نکل جاتے ہیں، ایک سال چھوڑا پھر بھاگ گئے، اور آپ دیکھے گا جو پڑھتے ہوئے چھوڑے گا وہ دوبارہ اس سے بھی پیچھے گرے گا۔ یہ آپ نے دیکھا؟ وہاں نہیں گرتا، دھکا پڑتا ہے نا تو بندہ اپنی جگہ سے کوئی دو قدم پیچھے ہی گرتا ہے، جھٹکا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہوتی ہے، اللہ یہ کہ بندہ اپنے آپ کو باندھ کے رکھے دونوں ہاتھوں سے تھامے۔ اچھا، جب آپ کسی کو دنیا کے فائدے یا لالچ کے لیے دین کا نقصان کرتا دیکھتے ہیں نا، تو آپ کا دل ٹوٹتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا۔ لیکن ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ سب کرتے ہیں، میری ساری دوستیں یہ کام کر رہی ہیں، مجھے بھی کرنا ہے، میرے ماں باپ مجھے اس پہ فورس کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے۔ اچھا، جب میں ان چیزوں کو سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یہ سچ ہی ہوگا نا، سارے تو پاگل نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ ہیں، سمجھدار ہیں، بچیوں کے لیے ایسا سوچ رہے ہیں، بعض دفعہ بھی قرآن پورا بھی نہیں ہوا ہوتا تو دوسری طرف چل پڑتے ہیں۔ وہاں 15-16 سال آپ نے صبر کیا ہے کہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی صرف بیچلر ہی کر لے، یہاں آپ ایک سے دوسرا 1.5 سال نہیں برداشت کر پا رہے، کمی ایمان کی ہے۔ لیکن جو چیز مجھے اسٹرینتھ دیتی ہے نا، وہ لوگ جو دنیا کا سب کچھ لے چکے ہیں الحمدللہ، لیکن جب ان کی زندگی میں قرآن کھلا، جب انہوں نے دین کو دیکھا قریب سے، تو اب اس وقت ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا دین بنا ہوا ہے۔ پریکٹس چھوڑ دی، جاب چھوڑ دی، کیوں؟ وہ کہتے ہیں اب ہمیں لگتا ہے کہ وہ اتنی نہیں ہے، یہ نہیں۔ یعنی میں نے یہ دیکھا، جن لوگوں کو بھی ڈگری ملی نہیں ہوتی نا، ان کے لیے وہ ڈگری بہت بڑی چیز ہے، اور جو لے کے دیکھ کے اس کا مزہ چکھ چکے ہوتے ہیں نا، ان کو جب دین ملتا ہے نا، وہ فوراً اس کو چھوڑ کے آتے ہیں۔ ہمارے اپنے ساتھی آن لائن پہ ادھر ادھر کام جو کرتے ہیں، میرا خیال ہے کوئی 7-8 مثالیں تو مجھے یاد آ رہی ہیں جو ڈاکٹرز ہیں، کوئی ریڈیولوجسٹ تھیں، کوئی ڈاکٹر میں تھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جاب نہیں کریں، لیکن ان کو اپنی زندگی کا بیسٹ یوز کیا دکھتا ہے؟ کہ جو وقت ہمارا ادھر گزرنا تھا وہ ادھر گزرے۔ پھر ان کو لوپ ہولز دکھتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی مردوں سے انٹریکشن ہوتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دو نمازیں پیچھے ہو جاتی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی پھر وقت نہیں ملتا گھر کو، قرآن کو۔ جب اللہ نے ایک رستہ دکھا دیا، اس پہ چل جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اس سے بڑی چیز دکھ گئی ہے۔ تو ساری بات کا پھر خلاصہ کیا ہے؟ نہ پڑھیں، نہ لکھیں، نہیں پڑھیں، لیکن جہاں اس کی زد آپ کے دین پہ پڑے تو پھر سوچیں۔ کیا دیکھیے، آپ یہاں سے نکلیں گے، آپ نیچے سے جب باہر اوپر جائیں گے، ادھر کیوی پہ آپ ادھر جائیں، या आप उधर जाए, राइट या लेफ्ट, आपकी डेस्टिनेशन बदलेगी कि नहीं? सबको पता है लेफ्ट लेंगे तो आप सिटी पहुंच जाएंगे, आप राइट लेंगे तो आप स्ट्रोमन चले जाएंगे, लिलेस्ट्रम चले जाएंगे, आप एयरपोर्ट चले जाएंगे, आप और आगे भी चले जाएंगे, ऐसे ही है ना। ये कभी नहीं हो सकता कि आपकी डेस्टिनेशन सिटी हो और आप लेफ्ट जाए और आपके नहीं देखना मैं सिटी पहुंच जाऊंगा। पहुंचेंगे पता कैसे, आप यहां से जाएंगे फिर लॉन्गशकूक से एक फिर टर्न लेंगे, फिर आप स्ट्रोवनर के रास्ते चक्कर खा खू के फिर कहीं सिटी पहुंचेंगे। रास्ते तो निकल ही आते हैं लेकिन वो पेंडा लंबा हो जाता है। ये जुमला लिख लें, बाज दफा हम जानते बूझते अपने दीन का पेंडा लंबा कर लेते हैं और फिर उस स्क्वाश होते हैं, जिनको अल्लाह ने जमाना होता है फिर वो पढ़ने पढ़ाने के दौरान भी खुद को रगड़ते हैं, खींचते हैं। अगर वाकई वो खुद को बांधे रखे तो अल्लाह फिर उनको बांध ही देता है। एक सिरा छोड़ा गए, आप कह लें कि एक तरफ सीधा चलना है, ना भी बेल्ट बांधे तो आप खतरे में नहीं है। एक है आपने पहाड़ी का सफर तय कर लिया, फिर ऐसे लोग दीन पर रहते हैं तो उनको ज्यादा मुश्किल आती हैं। तो भरोसा ना करें, हर बंदा सोचे, मुझे अगर 10 साल 20 साल पीछे कोई ले जाए तो मैं जरूर सोचूंगी मैं कहाँ थी। इस साल पाकिस्तान का जो मेरा ट्रिप था ना, तो मैं उस सिटी से भी होके आई जहां मेरी अपनी सारी स्कूलिंग, कॉलेज, जो भी पढ़ा, उस नाते से मेरी अपनी दोस्तों से भी मुलाकात हुई, एक दो से जो बहुत क्लोज सर्कट में थी। यकीन करें मैं सारा वक्त सोचती रही, ये कुछ मैं बड़ी बढ़ नहीं मारने लगी, शो नहीं मार रही, कुछ भी नहीं है मेरे पास जो मारूं। मैं सोचती रही कि हम सब कॉलेज में इकट्ठी थी, हम सब ने ख्वाब इकट्ठे देखे, हमने सब ने इकट्ठे पीरियड्स छोड़े हुए, वहां जाके रोल कॉल कोई लगा दे तो आप बैठ के अपने दही बड़े खाते रहे। कॉलेजों में यही कुछ होता था, हम कम ज्यादा नहीं करते होंगे लेकिन करते थे हम भी ऐसे, बस एक शौक था कि किसी तरह डॉक्टर बन जाए। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जितनी भी मेरे साथ मेरी दोस्तें थी और आज वो कहाँ हैं, उनकी जिंदगी किस डगर पे, वो किस स्टेज पे हैं, और मैं अपने आप को टैली कर रही थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सर सजदे से ना उठाऊं तो कम है कि मुझे अपना आप खुशकिस्मत लगा। हालांकि सारी अच्छी ही घरों में बच्चों वालियां हो गई, किसी के बच्चे की शादी हो गई, एक हमारी दोस्त डॉक्टर बन गई, कहीं अमेरिका चली गई, यानी खबरें मिलती हैं, मेरे दिल में कोई गिल्ट नहीं आया। मैं कहाँ पहुंच गई, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। हालांकि देखा जाए कि ना मेरे पास मेडिकल की कोई डिग्री होगी, ना मेरे पास कोई आगे से लंबी सनदें होंगी, पर मुझे एक लम्हे के लिए नहीं एहसास हुआ कि मैं उनसे कमतर हूं। बल्कि वो उनके दुख और वो जब मेरे से मिलने की ख्वाहिश रख रही थी तो मैं सोच रही थी कोई चीज तो है जिसके लिए मेरे पास आ रही है, मेरे दिल में वह ख्वाहिश नहीं है कि मैं इनको जरूर मिलूं, ये क्यों चार चार घंटे से दूर से आ रही है मिलने के लिए, क्यों? दीन की बरकत है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं। आप कहते हैं आपको अगर फिर दोबारा कहा जाए 10 साल पीछे जाए डॉक्टर बने, मैं अब भी बनना चाहती हूं पर इसको छोड़ के नहीं बन सकती। यानी मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जो करना था ना जिंदगी में या जहां मैंने आना था, मेरे अल्लाह ने बिल्कुल मुझे वो फिट कर दिया। मैं कैसा कर रही हूं, मेरी जो औकात है मैं बेहतरी कर लूं तो बेहतर है, लेकिन ये मुझे नहीं कभी आज तक जिंदगी में फील हुआ कि आई एम एट द रॉन्ग प्लेस। मुझे किसी हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर बन के फिरना था, या मुझे समझे किसी ऑफिस में एक बहुत खूबसूरत सी जगह पे सजना था, मुझे नहीं कभी भी आया। यानी कोई ख्वाब ही नहीं है। कोई कह दे आपको सियासत में जाना है, बिल्कुल कोई ख्वाब ही नहीं है। आपको कहीं कोई मीडिया पे जाना था, कोई शौक ही नहीं है। आपको मशहूर होना था, कोई शौक ही नहीं है। यानी आप, मैं आपको ये बातें सच से बता रही हूँ कि आप अपने दिल को टटोलें, इन्हीं के लिए तो लोग मेहनत करते हैं। आप मुझे कहें अच्छा आपका दिल करता आप टीवी पे आए, मेरा कोई दिल नहीं करता। आपको सारी दुनिया सुने, मुझे कोई शौक नहीं। बस मुझे ये शौक है कि मेरे जरिए किसी का दिल बदल जाए। मुझे कोई ना मशहूर होने की शौक है, ना मुझे करोड़ों की आज शौक है, ना मुझे महल्लात का शौक है। हम बड़े बड़े हवेलियों में भी रह के देख लिया है कि दिल उतना ही गरीब है। लोगों के हाथ में पैसे बाद में आते हैं, उनकी दौलत की नुमाइश पहले शुरू हो जाती है। जो $1 खर्च करने में आज से 15 साल पहले दिल बंद होता था, आज भी बंद होता है अगर वो फालतू खर्च हो तो, अल्लाह की कसम। और अल्लाह को देना है जिस रास्ते में, गरीब को देना है, कुछ करना है, ना कभी पहले सोचा था ना अब सोचा। तो जब हम दुनिया की दौलतों को और चीजों को पाके चौड़ हो जाते हैं ना, तो बिगाड़ शुरू हो जाता है। खुश हैं कि नहीं आप ये देखें। जिंदगी इसका नाम नहीं है कि आपके नाम के साथ 6 टाइटल लग गए, इधर स्टार्स लग गए, आपको एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड पर खड़ा। आज लोग इस धोखे में है। यकीन करें आप अपनी बेटियों के साथ बैठ के काउंसलिंग करें, पहुंचना किधर है, करना क्या है, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद, इसके बाद। आप कहते हैं हमने दीन की तालीम पढ़ी, फिर उसके बाद हम बीच में गैप ले लिया, फ्रीज करके दूसरी तरफ चल गए, यहां पहुंच गया, अब और 2 साल पढ़ना है, अभी 3 साल पढ़ना है, हो गया जी, आप 5 साल आगे जाएं, आप शहर की एक कामयाब डॉक्टर या पायलट बन के आ गई, बताइए नेक्स्ट। अल्लाह ना करे जिंदगी में एक छोटा सा हादसा बच्चियों के आता है ना, कोई धुतकार देता है या शादी का झटका पड़ा, उस सारे 20 साल की तालीम एक तरफ है, वो बच्ची लोगों की नजरों में मजलूम होती है जी, ये बच्ची गई थी घर नहीं बसा, सच है कि नहीं? क्या मेडिकल और फुलां चीजें खुशी देती हैं उस वक्त? खुशी इन चीजों में नहीं है, ये जो भरोसा करना है ना ये गलत है, इसको आप और मैं इस चीज को अपने दिल से बांध लें कि खुशी अब इस चीज का नाम नहीं है कि नए तजर्बे करें, चले आप मैं अपने दीन पे ले लेती हूँ, मैं इसको सोचूं, मेरा ख्वाब तो है ये, कभी मौका मिला तो अल्लाह पूरा करा भी देगा, मेरा दिल करता है मैं सऊदी अरब चली जाऊं, मुझे कोई ना मिले, कोई फोन नंबर ना, और मैं फोकस्ड होके वहां पढ़ूं, कुछ पढ़ूं वो चीजें जो मैंने नहीं पढ़ी हुई, या मैं वहां के उलमा से फायदा उठाऊं, फिर मैं सोचती हूँ चलिए मुझे और पता लग जाएगा, चार हदीस की किताबें पढ़ ली, अरबी फुल फर फर आ गई, ग्रामर अच्छी हो गई, तो वो तो मुझे फायदा हुआ, तो जो मैं किसी को आज फायदा दे रही हूं वो तो मैं नहीं दे पाऊंगी ना, तो मैं क्या कहती हूँ, अल्लाह ताला वो जन्नत में, यहां यही ठीक है, मुझे दीन के नाते से भी यही पसंद है कि जितना को मुझे अभी आ गया मैं वो दूसरों को बता दूं, मैं बहुत कॉन्टेंट हूं, ख्वाहिश तो बड़ी है, देखे इल्म की चाहत कभी कम हुई, ये भूख तो कभी नहीं खत्म हुई, लेकिन ये रखें कि मैं दूसरों को कितना सर्व कर सकता हूं, ड्रीम ख्वाब भरोसे, अगले पूरे 5 साल की प्लानिंग आप मुझसे भी बैठ के सुन ले, अल्लाह के हुक्म से मैं आपको अपनी उंगलियों पे बता सकती हूं कि मेरे अगले 5 साल के ख्वाब क्या क्यों है, क्योंकि मैं फोकस्ड हूं, जिधर दुनिया में अल्लाह ने जाने का मौका दे दिया, जहां गए जिंदगी का मकसद एक ही है और तर्ज जिंदगी भी एक ही है, ना मक्का जाके ईमान को बहुत बड़ा दिखा और ना अल्लाह के हुक्म से वेस्ट में जाकर ईमान घटा, बल्कि ये और ही बढ़ा, तो आप अपने बच्चों की काउंसलिंग किया करें कि बेटा इसके बाद लेना क्या है, आपका बच्चा डॉक्टर, आपकी बेटी डॉक्टर बन गई, वो अकेली दूसरे शहर में जाके पढ़ रही है, पढ़े, लेकिन आप मुझे बताइए कि वो एक ऐसी दलदल में खुद को डाल रही है जहां उसके ईमान को खतरा, आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें फिर बुरी नहीं लगती, वो अकेली जाएगी, वो सफर करेगी, वो अकेले में रहेगी, आप कहते हैं बहुत सिक्योरिटी इन मुल्कों में, मैं कोई तनकीद नहीं कर रही, मुझे पता भी नहीं आप में से किसी की बेटी आजकल बाहर है कि नहीं, वल्ला ही मैं सिर्फ एक समझ की बात कर रही हूं, फितने तो है ना, आजमाइश तो है ना, और कल इतनी पढ़ी लिखी बच्ची को अगर एक आम सीधा सा मर्द मिल गया तो वो सारी जिंदगी इस गिल्ट में तो जरूर रहेगी कि मेरा मियाँ इतना पढ़ा हुआ नहीं है, और जब उतना पढ़ा हुआ मिल गया तो हो सकता है वो दीन से ही दूर हो, तो आप अपने बच्चों के साथ इतना ज्यादा माइंडसेट उनका रखें, बात करें, अगर दीन सीख चुके हैं, बुनियादें पक्की हो चुकी हैं, नमाज रोजा ठीक है, हलाल हराम का फर्क आ गया, 15 साल की उम्र तक कुरान सीने में जा चुके, आप उनको इंशाल्लाह जिंदगी में नुकसान नहीं होगा, ये जुर्म है कि बच्ची को नमाज भी ना आती हो, कुरान का तर्जमा भी ना आता हो, सही पढ़ना ना आता, और वो डिग्री पर डिग्री ले, ये जुर्म है, ये आप माने ना माने, ये आपके मेरे सबके लिए क्राइटेरियन है, दीन कुरान तर्जमा तफसीर तजवीद ये अगर मिनिमम पे आ गया ना कि चल गई ये समझ, तो फिर मुझे एक हक है कि मैं आगे जितना मर्जी और भी सीख लूं, लेकिन बेसिक्स छोड़कर सिर्फ ये तवक्कुल कर देना कि बस वो मिल गया, ये गलत है, और आप में से कुछ लोगों के बच्चे बच्चियां भी स्टेज से आने वाली हैं, अभी नहीं आई, ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए आप पहले से उनके माइंडसेट का, और ये माइंडसेट आप नहीं करते, अल्लाह का कुरान बच्चों को कराएगा, तो अपने बच्चों को हकीकत में मैं कहती हूं इंसान के बच्चे समझ के पालें, ये दुनिया का बंदा, ये देखिए ना ये भरोसा ही तो है, ये सेटअप पे ना चले तो बच्चे का क्या हो गया, दाखला नहीं मिला, हाय बच्चे का साल जाया हो गया, हाय इसका कैरियर बर्बाद हो गया, ये पूरा जो आज का पूरा एजुकेशनल सेटअप है इट्स क्वाइट अननेचुरल, पहले भी लोग डॉक्टर बनते थे, पहले भी लोग साइंटिस्ट बनते थे, ऐसे नहीं बनते थे, ये एक बिल्कुल आप कह लीजिए कि बेदीनी का माहौल है, मैं ऐसे बच्चे को जानती हूँ, यानी सिर्फ मिसाल दे रही हूँ कि आप ये सोचते हैं ना कि आप किसी प्रोफेशन में चले गए तो बस देखना घुन बरसेगा, यानी पाकिस्तान में रहने वाली एक फैमिली अपने बच्चे को बाहर भेजती है, किसी दुनिया के दूसरे मुल्क में भेजा, बकौल उनके कि शायद 1 से 2 करोड़ रुपया लगे 5-6 साल में उसको बाहर से कहीं कुछ पढ़ाने में, चलो भाई 6 साल लगा के बच्चा आ गया वापस, जाने का आने का खर्चे का टिकट का जो भी हुआ, अब तो कुछ बन गया होगा ना, आए हैं जबकि नहीं अभी तो उस मुल्क में पढ़ा, अभी तो जी इनको इस मुल्क में पहले पढ़ना है, अच्छा जी फिर इधर इनको टेस्ट देने पड़ेंगे, एक साल कहा, दो ढाई साल में यहाँ के दो तीन टेस्ट होंगे, चलो जी वो टेस्ट भी अल्लाह अल्लाह करके हो गए, शादी कर दो, अब उसकी उम्र हो गई इतनी, अब वो कहाँ तक करेगा। अब क्या जी हाउस जॉब शुरू हुई है, वो कॉल उनके पैसा तनख्वाह नहीं देते हाउस जॉब में लड़के बच्चे को जिसको, वो कर रहे हॉस्पिटल्स में काम सब कुछ, लेकिन वो कहते हैं अभी दो ढाई साल ये फ्री काम करेगा और जब ये दो ढाई साल पूरे कर लेगा फिर इसके बाद कहीं इसको अगर स्पेशलाइज करना है मास्टर्स करना है तो बाहर जाना है, फिर उसके वीजे के इशू। मैंने कहा जरा आप बैठ के सोचें तो सही, ये आप, ये एक बच्चे की कहानी हम अपनी आंखों देखी बता रही हूँ। अगर वो लड़का 17-18 साल की उम्र में घर से गया और आज 28-29 साल की उम्र तक वो कहता है मुझे रोना आता है, आज तक मैं बाप से पॉकेट मनी ले रहा हूँ। माँ बाप खाते पीते हैं तो पता नहीं चलता, हर एक के माँ बाप तो नहीं दे सकते ना, लेकिन वो बच्चे को बड़ा गिल्ट है कि मेरे हाथ से अभी तक एक पैसा नहीं जेब में आ रहा, और अभी अगला जो पेंडा है वो कोई 10 साल का और है जिसमें वो किसी कदम पर खड़ा होगा। मैंने उसको कहा कि आपको पता है कि बेटा जो आप जो बात कर रहे हो ना, इसके ऑपोजिट अब रिसेंटली एक और भी चीज़ सामने आई, ये मैं आप सबको कहूँगी। यानी सऊदी अरब ने अब अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ऐसा सेटअप शुरू किया है नया, पहले तो उसकी बहुत ज़्यादा क्राइटेरियन है, उनका एज होती है एक 25 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चियों को, बच्चियों को तो अलग नहीं लेते, वो लड़कों को लेते हैं और शायद लड़की हो तो शादी के बाद का कुछ होगा, मुझे लड़कियों का नहीं इस वक्त नहीं पता, हस्बैंड वाइफ को ही लेते हैं, अकेली को नहीं, या शायद रियाज में एक यूनिवर्सिटी बनी है। किस्सा मुख्तसर, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ मेरे अपने भाई के बेटे का, अभी इस ट्रिप में मुझे जो खुशखबरी मिली है कि वो बच्चा पहले तो हाफिज़ बना था, फिर उसने यहाँ दुनिया की स्कूलिंग पढ़ रहा था, मेरा ख्याल है 20 से 21 साल की उम्र उसकी हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि अल्लाह ताला ने वही नसब पीछे जोड़ा हुआ है, एक मतलब अटेम्प्ट पे मदीना यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हो गया। मैं कहती हूँ बेटा आपके पैदा होने की जो मुझे खुशी हुई थी, फिर उसकी अभी रिसेंटली 1 साल पहले मंगनी हुई उस पर भी हम बड़े खुश थे क्योंकि पहला बच्चा घर का। मैंने कहा अल्लाह की कसम मुझे आज आपके इस दाखिले की उससे भी ज़्यादा खुशी है। मैंने कहा खुशी में बेटा आपकी सारी पढ़ाई मेरे जिम्मे है, ऐसे ही तुम पे एहसान नहीं कर। कहता पुप्पो मेरा पैसा कोई नहीं लगना। कैसे नहीं लगना, पूरी तालीम फ्री, साल में एक टिकट पाकिस्तान का, आने का जाने का फ्री, वहाँ का घर, वहाँ ये सऊदी हुकूमत इल्म पे लगा रही है, एक पैनी पैसा उस बच्चे का उस तालीम पे नहीं लगना। और वो अल्लाह ने उसको एक दफा मदीना में डाल दिया, अल्लाह उसको इमाम काबा बना दे, ये करें। मैंने कहा किधर हैं वो माँ बाप जिनके जवान बच्चे हैं, खुदा के लिए उनका तक पैगाम पहुंचाओ कि इधर भेजो बच्चों को, और अगर कोई लड़का ऐसा हो जिसकी शादी है तो उसकी बीवी को भी साथ वीजा मिल जाता है। आप क्यों नहीं ये ख्वाब देखते अपने बच्चों बच्चियों के? आज फिर देखिए दीन वही वक्त आ गया कि बैक टू दी बेसिक्स पे। तो ये जो बात बहुत लंबी होगी लेकिन ये जरूरी है, आज हमारा भरोसा तालीम पे है और फिर नहीं मिलता। मैं वो जो बच्चा दूसरा परेशान था, मैंने कहा छोड़ो बाकी चीज़ों को, अब तुम कोशिश करके सऊदी अरब जाओ, दो ढाई साल मेहनत करो, कम से कम तुम जाओगे तुम्हारी बीवी साथ होगी, तुम्हें रोटी तो वो देंगे ना जो तुम्हें खौफ आ रहा है कि बाप से ले रहा हूँ, तो तुम ये पढ़ो। कहते मैं तैयार हूँ, मैं मेडिकल से फेडअप हूँ, मैंने इतना पढ़ा है, लेकिन मैं पाकिस्तान में आके देख रहा हूँ कि टके जितनी भी कदर नहीं है इस डॉक्टरी की जो मैंने पढ़ी है, इल्ला ये कि मैं आगे जाऊँ। और आगे जाने के लिए कितनी रिश्वतें हैं, कितने उस पर सिफारिशें हैं, वो एक नया खाता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला कमी बेशी को माफ़ करे, आप अपने बच्चों के किबले सीधे करें। आप खुद सोचें आपके जिनके बच्चे डॉक्टर हैं, क्या सिर्फ डॉक्टर होने की वजह से वो खुश हैं? जिनके बच्चे इस वक्त पायलट बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, मैं कैसे पायलट बच्चे को अपने खानदान के जानती हूँ, खानदान का पहला बच्चा था पायलट बना, कितनी खुशियाँ बढ़ी, आज से मेरे 6-7 साल पहले तक की बात है, आज तक उसको बींग अ पायलट जॉब नहीं मिली, अब शायद कुछ और मिल गई हो, कुछ कर रहा है, क्योंकि वो जो पढ़ा था वो टेक्निक सी बदल गई है, अब कहते और पढ़ो नए जहाज चलाने का तरीका। फिर उसको मैंने सुना कि जॉब कोई और ही मिली है पायलट की, कहते पायलटों की जॉब ही नहीं, अब जहाज इतने ऑटोमेशन पे आ गए हैं कि पुराने पड़े हुए वो चला ही नहीं सकते, नाम पायलट है तो लेकिन नहीं कर सके। अब ये देखिए लाइफ टाइम स्टोरीज हैं, तो खुशी इससे नहीं मिलेगी। अगर आपने अपने बच्चों को असल खुदा से नहीं जोड़ा ना, अगर आपने उनको अल्लाह की मार्फत नहीं दी, उनके दिल खुले हों, उनको अल्लाह के रस्तों में भागने का शौक लग जाए, बने डॉक्टर, मुझे मेडिकल का प्रोफेशन बहुत प्यारा लगता है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना, नमाजी भी बने, साथ दूसरी भी चीजें, तो भरोसा ना करें इसके ऊपर कि मैंने ये काम कर लिया तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। याद रखिए ये असबाब है। आप देखिए अंगूठा छाप सेठ जो है वो करोड़ों रुपया लेके जाते हैं घरों में, जिनको नाम भी नहीं लिखना था, तो कई इतने डिसेंट सोबर डिग्री होल्डर्स बेचारे आज जॉब्स की वजह से बैठे हुए हैं। तो ये सारी बात का खुलासा क्या निकला कि हमने अपनी तालीम पे भरोसा नहीं करना। और याद रखिए, ये खुदा और ये शिर्क का सबब दिखता कोई नहीं हमें। कब्र पे चार लोग खड़े होंगे, हम कहेंगे मुशरिक। और एजुकेशनल सिस्टम को खुदा बनाने वाले हम कहते हैं ये बड़े डिसेंट लोग हैं। यही शिर्क है।